समान है, परमात्मा का दर्शन ये प्रकरण चल रहा है। दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करना, शक्ति सबके अंदर है, लेकिन हम मन की दुर्बलता के कारण कहीं सुनने से, कहीं देखने से, कहीं मर्यादा के बाहर जाने से हम कमजोर हो गए हैं, हम दुर्बल हो गए। जैसे आप घर से दूर निकल गए परेशान हैं, तो जिस रास्ते से आप घर से दूर गए उसी रास्ते से आप वापस भी आ सकते हैं। आप धमपत पढ़िए तो धमपत में भी है। अगर आप साधना में परेशान हैं तो परेशानी कारण पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, धन नहीं है, मकान नहीं है, कोठी नहीं है, आपके दुख का कारण कुछ भी नहीं। अगर दुख का कारण है तो स्वार्थ। क्या स्वार्थ है? केवल अपने लिए सोचना। अगर उपनिषद उठा के देखें तो बड़े भाव से कह रहा हूं, जिन्हें भी शून्यता प्राप्त हुई, शून्यता में भी हमारी दुर्बलताएं खत्म हो जाती हैं, और शून्यता में जो दिखाई पड़ता है उस सभी समाधि का आपका चिंतन है। इसे थोड़ा लूंगा, थोड़ा बता दें। और निर्विकार में जहां विचार ही नहीं वो तो उच्चतम अवस्था है, वहां का आपको अपना भी ख्याल नहीं। लेकिन आज सभी समाधि का, साकार समाधि का, ईश्वर दर्शन हमारे अंदर किस तरह होता है, कैसे होता है, उसका पहले प्रवचन में जो कहा तो वही दो मिनट जरा आपको बताऊंगा। न मंदिर का खंडन है, न मस्जिद का, न गुरुद्वारे का। जगत में कोई चीज आपको दुख नहीं दे रही है। हमारा ज्ञान, हमारी नासमझी, हमारी दुर्बलता हमारे दुख का कारण। एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति का हाथ जल गया, एक कहानी के माध्यम से सुनाया। एक व्यक्ति का हाथ जल गया, महात्मा के पास गया, कहते महाराज जी दो घंटे पहले मेरा हाथ जला, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, इसका कोई उपचार करें। महात्मा ने कहा उपचार मैं करूंगा, लेकिन दर्द पर इतना ध्यान है वो ज्यादा दर्द है, दर्द इतना नहीं है जितना आपके मन में दर्द है। कहा कैसे? तो कहानी समझा गया। कहते आपका प्रिय भोजन क्या है? एक कहानी है, एक दस मेरा विस्तार, लेकिन ये जो दुख सुख की बात हम करते हैं वो समझाने के तरीके। आपको सबसे अच्छा भोजन क्या लगता है बताया? पुरानी कहानी है, खीर पूरी। खीर पूरी आई, खाने लगे, कहानी है। 10-15 मिनट में खीर पूरी का भोजन के रूप में स्वीकार करने के बाद महात्मा जी पूछते हैं, कि 15 मिनट दर्द महसूस हुआ, कहते आपने याद दिलाया तो दर्द हुआ, भोजन इतना बढ़िया था कि मुझे दर्द का कोई ख्याल ही नहीं, तो कहाँ गया। और होता है कि कहानी के माध्यम से भी सच समझ, परिवार में आपका ध्यान ज्यादा कहाँ है, कहानी है, गांव की कहानी है, क्या मेरा ध्यान मेरी गाय ने जो वाछड़ी दी है उस पर, कहा वाछड़ी लाओ सामने, इसको खिलाओ पिलाओ, आधे घंटे लगे, कई आधे घंटे आपने दर्द का अनुभव किया कहा नहीं, कहानियों में आ रहा है कि हमारा जो मन है, और ऋषि मुनियों ने भी कहा कि मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है, मन मतलब विचार, इसी मन को हम लोगों ने समझाने के बड़े तरीके निकाले। अर्जुन क्या कहता है, हे केशव मैं पागल हाथी को वश में कर सकता हूं, हवा को भी मैं रोक सकता हूं, लेकिन मन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। संभव है कि अर्जुन के माध्यम से बात हमें बताई गई, लेकिन सत्य है। तो मन का संबंध विचार, विचार का संबंध पर्यावरण, आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, हमें किसी धर्म के प्रति खंडन की भावना से कुछ नहीं करता, जानने की भावना जरूर करता। पूरे विश्व में हर तरह के लोग हैं, जन्म के संस्कार से, एक हिंदू पागलखाने भी चला जाए लेकिन गाय के लिए गलत विचार नहीं करेगा। पूरे विश्व में ऐसे भी लोग हैं, सेकंड नेचर में, संस्कार में, विद्वान हो जाए, साहित्यकार हो जाए, कवि हो जाए, बड़े उच्च कोटि के सिद्ध हो जाए, राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन मैं जानता हूं गाय की पूजा नहीं करें। हमारा जो मन है उसमें किसी तरह भय नहीं पैदा होना चाहिए। भय का संबंध वस्तु से नहीं है, संस्कार से। हिंदू गोमांस का सेवन करेगा डरेगा, भय आएगा। कुछ लोग है करते हैं, करने दीजिए, क्योंकि उनके संस्कार में गो का भक्षण करने में कोई भय नहीं है, डर नहीं है। मैं अपने लड़के की शादी अपनी बहन की लड़की से नहीं कर सकता, नहीं, कुछ लोग हैं कि करते हैं, करने दीजिए। तो सबसे पहले अगर परमात्मा को मन में लगाना है तो आपके संस्कार में सुनने से, देखने से, चलने से अगर किसी तरह भय पैदा होता है तो सारी दुनिया के लिए ठीक होगा, लेकिन आपके लिए जीवन की सफलता में दो ही हमारे दुश्मन हैं, एक भय है, एक आलस है। कुंभकर्ण की क्या बात आती है, 6 महीने सो रहा है, आवाज आई, बहुत कुछ किया गया, हाथी भी बुला के हाथी से आवाज दिला नहीं, लेकिन 56 प्रकार के सुगंधित पकवान बनाकर पास में रखे गए तो जानते या विचार। भोजन तो सभी करते हैं, बात भोजन की नहीं, बात विचार की। शेर मांसाहारी है लेकिन ताकत वाला है, बाघ मांसाहारी है लेकिन शक्ति वाला है, उसको स्पर्श करते हैं उसके चमड़े पर बैठते हैं पहनते हैं, गधा घास खाता है लेकिन स्पर्श भी नहीं करते, बात विचार जो विचार शक्ति शेर और बाघ में हो वो गधे में नहीं। इसलिए आप अपने अंदर किसी तरह से दो चीज को प्रवेश न करें, आलस और भय। आलस में तो जाति पाति नहीं है, केवल एक विचार है कि आप आलसी नहीं बने, और संस्कार के विरुद्ध जाओगे तो भय पैदा होगा। सारी दुनिया शराब पीती है, शराब पीना इतनी खराब बात नहीं है अगर नियम से पिए, अगर प्रगति होती, लेकिन एक शब्द को नहीं पीना चाहिए, ये व्यवहारिक बात है, संस्कार की बात है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने आपके आकृति से, आपके कृति से, आपके संस्कार से जो मर्यादाएं बनाई है सोच समझ बनाई। इसलिए एक संत अगर शराब पिएगा तो व्यवहारिक मर्यादा टूटती है। इसलिए वेदों ने कहा है, आप रिकवरी आप फेस पढ़े डॉक्टर राधाकृष्ण का, तो उसमें आए तुम अपने संस्कार से ऊंचे उठो, दूसरे की नकल ना करो। संभव है कि दूसरे के विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरे की नकल कमजोर आदमी करते हैं, अर्थात हम आप इतने अच्छे बने कि लोग हमारी नकल करें। हर आदमी ये सोचे, हर बेटा और बेटी ये सोचे, ये बड़ी सुंदर बात, मेरी नकल दूसरे करे, दूसरे की नकल मैं न करूं तो सब लायक बन जाऊं, मैं स्वयं देने लायक बन, मैं सोचूं आप सोचे आप सोचे। हर व्यक्ति जब देने लायक बनेगा तो उसके लिए पुरुषार्थ करेगा, प्रयत्न करेगा, मैं ध्यान के विरुद्ध नहीं हूं, भारतीय हूं सन्यासी हूं लेकिन ध्यान के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन चाहे कोई संस्था हो कि मंदिर हो कि मस्जिद हो कि गुरुद्वारा हो, अगर दान देने से वहां की व्यवस्था बिगड़ती है तो व्यवस्था के खिलाफ, बड़ी बड़ी जगह गया हूं दान भी करोड़ों के मिलते हैं लेकिन थोड़ा दुख होता है, जो एक मानवता का दर्शन होना चाहिए नहीं होता। आप देख लें बड़े प्यार से कहीं भी सुर और असुर, देवता और राक्षस इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन समुद्र में से लक्ष्मी निकालने के लिए दोनों इकट्ठे हुए। कथाएं आप जानते हैं, मैं तो मनोवैज्ञानिक स्वरूप बताऊंगा, कहीं भी देवता और राक्षस साथ नहीं हुए, लेकिन लक्ष्मी का अभाव आने पर समुद्र का मंथन किए हैं, कहानी आप जानते हैं। सेंट्रल आइडिया जो मेरे आपके समक्ष रखनी है कि लक्ष्मी एक ऐसी चीज है कि देवताओं को भी चाहिए, राक्षसों को भी चाहिए, अच्छे को भी चाहिए, बुरे को भी चाहिए, केवल उसके उपयोग की बात है। तो खंडन लक्ष्मी का नहीं है, लक्ष्मी प्राप्त करके उसका गलत उपयोग है, और गलत उपयोग हमारा परिवार का सबका सत्यानाश करे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि घर छोड़ने से परमात्मा नहीं, आपके अंदर जो अहंकार है, आपकी जो दुर्बलता है, आपकी जो कमजोरी है, आप जो दूसरे के अभिप्राय से अपने को कमजोर मान लेते हैं, उसका क्या करना है? आप संन्यास का भी अर्थ यही है, अपनी कमजोरियों का त्याग करना संन्यास है, घर छोड़ना। अगर घर छोड़ने से परमात्मा मिलता है तो आप सब मेरे साथ 15 दिन के लिए हरिद्वार चलें, परमात्मा मिल जाएगा, फिर वापस आ जाना। वो तो समझ के एक ट्रेनिंग है, आज मेरा बच्चा IAS में आया, ट्रेनिंग में जाना है तो छोड़ के जाएगा, लेकिन छोड़ा है, ये त्याग उसकी प्रगति के लिए है, भीख मांगने के लिए नहीं है। आप लोग यहाँ आते हैं सभी अच्छे हैं, आपने जो त्याग किया आए उसके पीछे है कि और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। इसलिए नहीं कि घर में कमजोरी थी कुछ हुआ इसलिए आए। और अगर किसी तरह कमजोरी के कारण आपने संन्यास लिया, त्याग किया, तो जिसकी जड़ में ही कमजोरी है उसके फल में कभी ताकत नहीं। गीता में भगवान क्या कहते, तू संन्यास के बाद अर्जुन कह रहा है कि क्षति धर्म से अच्छा संन्यास है, लेकिन एक कमजोर क्षणों में कहा, समझ के नहीं कहा। तुलसीदास ने भी कहा, नार मुई गृह संपत नाथी मूढ़ मुड़ाई भय संदासी, व्यवहार में कमजोर हो गए, आपको हाथ जोड़ करके सुनाऊंगा। कभी कभी ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं, पत्नी से परेशान होकर या शादी नहीं होती, बच्चों से परेशान होकर, कोई ना कोई। मैंने कहा ये जो संन्यास की बात आप कर रहे हैं, आपकी कमजोरी है। जब आप शादी किए थे तो हंस रहे थे, आज रो क्यों रहे, क्या कमजोरी आ गई? या विचार की भगवान के जीवन में कोई निर्णय नहीं है, आप पढ़ाई का निर्णय लें, एक अच्छे ऑफिसर बनना उसका निर्णय, लेकिन ये पढ़ाई और इसके जो निर्णय हैं वो समझ करके लें, किसी के कहने से ले लिया, किसी को खुश करने के लिए आप कह दिए, तो ये भी आपकी कमजोरी है। इस कमजोरी में आपकी प्रगति नहीं है। आते हैं लोग मेरे पास, पूछता हूं सब, कोई भी निर्णय, लेकिन कमजोर बन के नहीं। भगवान किस कहते, संन्यास सर्वोत्तम है, लेकिन समझ करके आए, तो कमजोर बन के संन्यास ले रहा है। एक हंसी की बात सुनाए, हंसी की बात, मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, थोड़ा मनोवैज्ञानिक हो तो वहां के आसपास वालों से पूछता हूँ, आप बहुत अच्छा करते हैं कि गुरुद्वारे में आए, मंदिर में आए, मस्जिद में आए, बड़े प्यार से कह रहा हूं, केवल घर की इज्जत बनाने के लिए मेरे पुत्र और मेरी पुत्री पर, मेरे बेटे की पत्नी पर कोई आक्षेप न लगाए, उस आक्षेप से बचने के लिए परेशान होकर स्वामी जी भाग करके मैं मंदिर मस्जिद गुजार चढ़ गया, तो मुझे अंदर बड़ी दया आ गई। कि ये लोग यहां बैठ के क्या करें। एक किस्सा आपको सुना दूं, भारत की। आज भी वृंदावन जाइए तो इस्कॉन का मंदिर है, लेकिन लोग अंग्रेजों का मंदिर बोलते हैं। तो हाँ, रिक्शे टांगे वाले किसी से पूछे अंग्रेजों का मंदिर जाना तो एक मिनट में, इस्कॉन बोले तो कोई नहीं जाना। तो मुझे भी जिस ऑटो रिक्शा बैठ करके मैं आश्रम पर गया, सूरत मुनि निवास है हमारे साधु संतों का परिचय है, तो ऑटो रिक्शा वाला कहा कि स्वामी जी आप वृंदावन पहली बार आए हैं। तो मैं कहा मैं मनोवैज्ञानिक हूँ। मैंने कहा अच्छा, मान लो कि मैं पहली बार आया हूँ तो आप क्या करोगे। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली बार आया तो लूटूंगा, उसकी बात नहीं करूँगा। यहाँ पर एक अंग्रेजों का मंदिर, वहां जरूर जाना। मैंने कहा ठीक है, रिक्शा वाला तो मैं तो समझ गया इस्कॉन का होगा, अंग्रेजों का मंदिर क्या होता। अब गए हम वहाँ आश्रम के बाद, सभी कहते जाना चाहिए। एक 24-25 साल का अंग्रेज मिला, लड़का मिला, बातचीत। उसकी बातचीत से जो बताना चाहता हूँ सुनिए। गले में आवाज आना बंद हो गया, डॉक्टरों ने कहा नहीं ठीक हो सकता, कुछ है ऐसा मेडिकल की बात है, लेकिन मूल बात को बताना चाहूँ। नौकरी भी छूट गई, अरे हर तरह से तरस हो गया। फिर उसे सुनने में आया कि भारत एक ऐसा देश है जो निकम्मे को भी खिला देता है। मैं स्वामी जी वृंदावन आया, ऐसा हुआ ही। यहाँ के पुजारी ने कहा इस फोन के भाई तुम रोज शंख बजाया करो, कीर्तन तो कर नहीं सके। तो स्वामी जी साल भर तक शंख बजाया, एक दिन अचानक शंख गिर गई और मेरे मुंह से निकला हे कृष्ण, और उस दिन से मैं बोलने लगा। वापस मैं इंग्लैंड गया, बड़ा सबको आश्चर्य हुआ, मेडिकल वाले भी घबरा गए जो बोल नहीं सकता था, लेकिन शंख बजाने से धीरे धीरे नसों में ब्लड का सर्कुलेशन चालू हुआ, आवाज आई। स्वामी जी निकम्मा बनने पर मेरे देश में मुझे जगह नहीं, लेकिन ये भारत ऐसा है कि निकम्मे का भी गुजारा कर देता है। एक निकम्मे को भी वृंदावन में जगह मिली तो अब निकम्मा नहीं हूं, काम का आदमी हूं, लेकिन रहूंगा वृंदावन में, सबको छोड़ जाएगा, रहूंगा वृंदावन। एक बात है, तो ये जब मैं हरिद्वार वगैरह जाता काफी लोग मिलते हैं, अच्छे घर के हैं, सब कुछ है, लेकिन घर से त्रासित है, दुखी है, और घर की इज्जत बचाने के लिए पलायनवादी बने, कमजोर है, चाहे गुरुद्वारे की बात हो, मस्जिद की बात हो, कुछ। यही हमारे भगवान कृष्ण का है, घर में रहो, मुकाबला करो, भागने से परमात्मा नहीं मिलेगा। हाँ, दो टाइम की रोटी मिल जाएगी और हम शांति शांति करोगे, लेकिन बोलोगे ओम शांति शांति, बाकी शांति का दर्शन भी होने वाला नहीं। बोलोगे कुछ है, मैं देख रहा हूं, मैं नाम नहीं लेता, पास में मेरे पास बैठे हुए हैं, हमारी स्थिति है। 8-10 साल पहले वो महात्मा जी से मेरा भी परिचय यहाँ हुआ था, पास में रहते थे, तो मेरा सीधा कहा था स्वामी जी फलाने सब आत्महत्या करके मर गए। मैंने कहा उसे करना ही था ही उसका ऐसा, अभी 4-4 दिन के बाद। जब तुम मर्यादा में नहीं रहोगे और घर से पलायनवादी बने, कमजोर क्षणों में छोड़े, तो क्या होगा? आत्महत्या करके मर गए। अब देखिए, साधु बन के भी और आत्महत्या करनी पड़ी। आप कहें क्यों? उनका थोड़ा इतिहास में जानता हूं, वैसे त्रासित होकर दुखी होकर उन्होंने संन्यास लिया। अब दुखी होकर जो आदमी संन्यास लेगा, अब आता है मनोविज्ञान, थोड़ी भी इज्जत मिलेगी तो दूसरों को वो दुखी करता है। वो महात्मा की यही आदत है, थोड़ा कोई सुखी महात्मा देखे निंदा करे, अरे मेरी भी निंदा किया था उन्होंने कि साधु होकर के गाड़ियां रखता है, ये है ये, तो हमें कहते वीआईपी संत बोलते थे, वीआईपी संत गए, वीआईपी संत बोलते थे, मुझे क्या बोलते थे, वीआईपी। अब बोलने वाला कोई नहीं, लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा उनको बोल दो मेरे से क्या मतलब, अभी चार छह आठ दिन की बात है, बताइए। तो कपड़ा पहनने शांति नहीं मिलती, घर छोड़ने शांति नहीं मिलती, मन का जो मैल है, मन की जो दुर्बलता है, उसका क्या करो, कपड़ा बदलने में कुछ नहीं, बताया ना हाल। बाकी किससे बहुत अयोध्या के भी साधुओं के भी, अयोध्या के भी किससे हैं, काशी के भी हैं, बनारस के भी हैं, हरिद्वार के भी हैं, वहां जाइए पूछिए तो पता चले कि संत बन करके भी कितने लोग जहर खा के मरे, आत्महत्या किए, उसके पीछे दुर्बलता। मेरे दो चेले हैं, एक को आश्रम दिया एक को नहीं दिया, तो जहर खा के मर गया। अरे तो एक बात करता, एक बड़े गुरु का चेला होकर दूसरा आश्रम बना लेने, किसी की मरी हुई चीज पर बैठने की क्या जरूरत। लेकिन नहीं, उनको परमात्मा नहीं चाहिए था, उनको तो आश्रम चाहिए, पहले से ही आ पाए। इसलिए परमात्मा के दर्शन में कोई चीज बाधक नहीं है। और हरिद्वार और घर छोड़ करके बनारस में रहने से कुछ नहीं हुआ। ये जो मन की बात है, जो आपकी बात है, आप कहीं भी है लेकिन समझ के रहे, कमजोर बन के न, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए भगत न बन जाए, अपनी कमजोरी को सिद्धांत न बनाए। डॉक्टर साहब ने कहा स्वामी जी नमक कम खाइए, मुझे आपको बताना है कि भाई नमक नहीं खाता, नहीं खाता, इसी को सिद्धांत बना लो। मेरी कमजोरी है कि डॉक्टर ने कहा कि नमक मत खाइए स्वामी, ये तो अच्छी बात है बोल दिया, और इसी को सिद्धांत बना लो। मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, 10 साल से नमक नहीं खाता। लोग कहते कितना बड़ा महात्मा है, 10 साल से नमक नहीं खाता, आप तो महात्मा मानोगे। और महात्मा जी सोचते नमक खाऊंगा तो हार्ट अटैक होगा, मर जाऊंगा, आपको पता ही नहीं चलता नमक क्यों नहीं खाता, और सिद्धांत बना लिया। और इसको सिद्धांत बना लोगे तो इससे कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं, नमक खाए कि न खाए। एक हमें महात्मा, आज महात्माओं की बात है, एक महात्मा मिला, मैं थोड़ा उनका इतिहास जानता था। मैंने कहा महाराज जी आप बाल नहीं निकलवाते, दाढ़ी और बाल रखते, इसके पीछे क्या रहस्य? कहे मधुसानंद तुम्हें बताऊंगा, सच बोलते हो लेकिन मेरा नाम कभी मत लेना। मैंने कहा बोलिए। कहा मैं बाल बनवाने गया, गरीब था, बाल बनवाने गया तो मैं बैठ गया दुकान पे, मैं सोचता तो 1-2 रुपया लेगा, वो 5 रुपया मांगा, मेरे पास था नहीं, मुझे थप्पड़ मार के निकाला, इसलिए मैं दाढ़ी मूछ रख के, अब दाढ़ी मूछ रख के महात्मा तो बन गए, लेकिन मूल बात है कमजोरी, पैसा नहीं था, इसलिए। एक बार कल भी एक आए थे वकील साहब का, यहाँ आसन लगाओ, फिर चले गए, फिर आए, अभी तक पता नहीं किधर गए, फिर अब बताइए, बस इतना कह के गए। ये बहुत बड़ा आश्रम है, और बहुत बड़ा आश्रम है, कोई लालच में आए महात्मा से क्या मिलना। तो इसलिए न गेरुआ बस की बात है, न आश्रम की बात है, मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरा हर शिष्य 1 करोड़ की कोठी बनाए, 50 लाख की गाड़ी में घूमे, 4 फैक्ट्री खोले, कितना काम दोगे लोग, कितने लोग आपके माध्यम से भोजन प्राप्त करेंगे। और परेशान होकर के आप मनीषा ने चेले बन गए तो और कहाँ से लौट लाऊं वो मुझे सोचना पड़ेगा। फिर एक और मानने वाला है, भले गुरान माने, भले मैं महामंडलेश्वर विद्वान हूँ, लेकिन भारतीय संस्कृति के आधार पर भिक्षुक हूँ, भिखारी हूँ। आपको बता, ये भिखारी को क्या अहंकार करना, मेरे चेले हैं उनके लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी। तो मेरा हर चेला भीख देने लायक बने, भीख मांगने लायक न बने, देने लायक बने। और जब ये स्थिति हो जाएगी तो कितनी दुर्बलताएं, चोरी क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, कमी के कारण। और जब हर व्यक्ति देने लायक बनेगा तो मन में चोरी की बात क्यों आएगी, गलत बात क्यों आएगी। इसलिए परमात्मा आपके पास है, वेद क्या कहता है, ये सभी की बात कर रहा हूं, निर्विकार की पूर्ण समाधि की टोटल बात मैं बात उठाऊ को तो करोड़ों में किसी को होते, लेकिन ये सबको लग सकते। अब सुनिए, राइट कर सहनाई नवाज जी सुन, मैं अपने अहंकार को नहीं बढ़ा रहा हूं, आपको परिचय दे रहा हूं। मेरी पूरी टपाल का आना जाना वकील साहब तो रखा है, तो मेरा संबंध सराय नवाज बिस्मिल्ला खान से भी था, मुस्लिम होते हुए। वो तो कृष्ण का भक्त था, वकील से पूछे टपाल का, परिचय नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं एक अथॉरिटी हूं जो बता रहा हूं। मैंने बिस्मिल्ला खान से पूछा, आप पढ़े लिखे नहीं और पूरे जगत को सहनाई के माध्यम से अपनी शक्ति का परिचय दिया, एक चमत्कार पैदा किया, इसका रहस्य मैं जानना चाहता हूं। बिस्मिल्ला खान ने कहा, स्वामी जी जब सहनाई बजाने बैठता हूं तो पूरा जगत भूल जाता हूं और अंदर से कृष्ण का भक्त हूं, लेकिन कोई मुस्लिम नाते निंदा न करे तो मुझे सामने कृष्ण ही नजर आते हैं, दूसरा कोई नहीं। और बाद में जब टेप सुनता हूं तो नए राग रागनी निकल आते हैं, बाकी आज तक मैंने कोई राग रागनी अपने तरफ निकाला नहीं। कृष्ण की भक्ति करते करते तद्रूप हो गया, किसमय हो गया, तो अपने आप राग रागनी। पंडित रविशंकर सहनाई सितार वादक, ये तो काफी पढ़े लिखे हैं, विदेशों में इनका बहुत है, उन्होंने भी। तो मैं परिचय नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं कि सभी की बात जो आपको बताना चाहता हूं। सहनाई नवाज बिस्मिल्ला खां को भी पद्मश्री की उपाधि मिली। जा विचार की, अब एक पढ़े लिखे व्यक्तियों पर आए, सर सी वी रमन आपकी कृपा से परिचय, और जो उनके नजदीक रहे सब जानते हैं कि जब प्रयोगशाला में जाते थे तो दो दो दिन हो जाता था, पता नहीं चलता था। न्यूटन का अल्बर्ट आइंस्टाइन का सुना होगा, लेकिन मैंने तो देखा है। कबीर का सुना, सूरदास, लेकिन ये तो देखा है। अभी भी सभी की बात कर रहा हूं, राम की बात करूं, किसकी बात करूं। मन को हटाना बहुत मुश्किल है, द मोर यू थिंक द मोर यू पुट योरसेल्फ इनटू ट्रबल। जितने सोचो कि मन इधर नहीं जाना चाहिए, नहीं उतना ही जाए। तो क्या कहा गया? सब में परमात्मा देखो, भावाद्वैतम सदा क्रिया, क्रियाद्वैतम न करके, यह भाई जी उन्होंने कहा। सभी समाधि में जाने के लिए भावाद्वैतम सदा क्रिया, क्रियाद्वैतम न करके, यह भाई जी सुन। अब इसलिए भाव का मतलब है आपका अपना संस्कार विचार, ये नहीं कि मेरा भाव आप पे लगा। अब आइए जन्म के संस्कार से, कोई राम को मानता, मतलब कोई किसी का भाव राम में है, किसी का कृष्ण में है, किसी का शंकर में है, किसी का पैगंबर में है, किसी का जीसस क्राइस्ट में है, किसी का भाव नर्मदा में है, गंगा में है, वहां नाम नहीं लिया गया। उनका भावाद्वैतम सदा कल्याण, क्रियाद्वैतम तुम्हारा भाव, एकलव्य का भाव द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाकर अब सिद्ध हो गए। भाव विचार, तो मैं न राम की बात करता हूं, मैं कृष्ण के न ओम के न सोम के न वाहिगुरु के न अल्लाह के, आपका भाव किसमें? उसी भाव को छोड़ करके दूसरा भाव, गीता में क्या आया, योगेश्वर ने गीता में जो कहा स्वाध्याय वालों ने जबरदस्त इसका प्रचार किया, पांडुरंगा वाले उनको प्रणाम कर जबरदस्त किया, नहीं तो कोई जानते नहीं था कि पातंजलि कौन है और ब्रह्मसूत्र क्या है, उपनिषद क्या है। अनन्यासो मामे जना प्रसाद, वहां भी किसने नहीं कहते मेरे में मन लगा, वो कह रहे हैं अनन्य भाव से। देखें अनन्य मतलब जहां भाव उसके अलावा दूसरा भाव ना है, ये नहीं कहा कि मेरे भाव, सबको समझाने के बाद किसने कहा तेरा भाव किसमें, ईमानदारी से बता। ये नहीं कहा कि मेरे में मन लगा, मेरे लिए भाव ना, ये तो फिर वही स्वार्थ हो गया। विचार के जवाब दो अर्जुन, कहते मेरा भाव आप में, फिर से विचार कर आप में, एक बार और समय देता हूं अच्छी तरह विचार कर आप में, तो अनंत भाव से तू मेरे प्रति समर्पित है, तो सर्वधर्मान पद माम एकम शरणम, तो अब सब सारी चिंता छोड़, भूत और भविष्य छोड़, तो यही नजर, यही मैं आपसे कहता हूं। कई बार आप रूप मेरे पास आते, मैं नहीं कहता मुनि साहब उनको मानो, जिसे भी मानते हो मानो, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं किसी शरीरधारी को नहीं मानते, लेकिन अगर राम को आप मानते हो, किस को मानते हो, शंकर को मानते हो, तो अनन्य भाव रखिए। मैं कोई प्रशंसा करना नहीं चाहता, दूसरे जो आज वर्तमान में संत नहीं है, सिद्ध थे, उनके शिष्य आते हैं, एक आपको बात बता रहा हूं जिनको अनुभव है ही, मैं कभी बदलता नहीं, मैं जानता हूं। मन का भले तुम्हारे गुरु नहीं है, शरीर से शब्द गुरु है, शब्द ब्रह्म है, तो शब्द अपने गुरु का रखिए, और इसका 1.25 लाख जाप कीजिए, उन्हीं का ध्यान करके अपने गुरु का मेरे कहने पर, और 1.25 लाख के बाद गुरु तुम्हें किसी न किसी तरह प्रेरणा देंगे कि शरीरधारी कौन बताएगा। तो वही मैं क्या प्रशंसा नहीं करता कुछ लोगों का, तो 1.25 लाख पूरा होने के बाद मेरे ही पास आए। मैंने कहा बताओ भाव किसमें है, कहा गुरु की इशारा आपकी तरफ। मैंने कहा ठीक है गुरु उनको रखिए, मैं रास्ता बताता हूँ। इसमें क्या हो ऊपर जाके सब एक हो जाते, आप सभी मंदिर में जाइए। और तुलसीदास वाली बात याद रखना, सभी मंदिर में जाओ मस्जिद में जाओ, मैं खुली छोड़ देता, बुरा न मानिएगा, शमशान में भी जाओ कैलाश में भी जाओ। अब मुझे गलत न समझे, कहीं शराब बिकते तो वहां भी जाओ, पीने के लिए नहीं भेज रहा कि शराब जाकर, गुरु जी बहुत अच्छी बात होता है, जहां शराब बिकते वहां भी जाओ। लेकिन एक चीज देखो और स्वयं इसका सारांश निकाल, शमशान में जाने से डरे तो नहीं, शराबी शराब जहां बिकती है वहां जाकर के मन विचलित तो नहीं हुआ, जा विचार कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, शराब देख करके आप विचलित हो गए, ये दुर्बलता है, पीने दो तो मत पियो, शमशान जाके डर गए आपकी दुर्बलता है, क्या परमात्मा मिलेगा। तो मैं सबसे कहता हूं कि शराब भी बिकती जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारा मस्जिद जाओ, चर्च में जाओ, लेकिन तुलसीदास की तरह जाओ। तुलसीदास जी वृंदावन आए, ये सभी समाधि की एक प्रोसेस एक विधि बता रहा हूं, ये आप पर कहते हे कृष्ण मेरा भाव राम है और आपके ही से स्वरूप राम है, मैं उनको नमन करता हूं और आप दोनों एक हो, तो कुछ क्षणों के लिए मेरे भाव को समझो और मुरली का त्याग करके हाथ में धनुष बांधो। इतिहास प्रसिद्ध है, प्रमाण है कि किसके हाथ में से मुरली छूट गई और धनुष बाण आ गया। ये आपके भाव की बात, इसलिए मैं आप सभी जगह जाऊं, सभी महात्माओं का प्रवचन सुनूं, लेकिन भाव कैसे परमात्मा सुनो, ये विचार की बात है। और देखो कितनी जबरदस्त ऊर्जा आपकी बचती है, मैं तो इधर नहीं जाऊंगा मंदिर नहीं जाऊंगा, ये घृणा करने से ऊर्जा बहुत बेकार चली जाती। जैसे मैं बताऊं, आप 10 गाय रखे, घास चारे का प्रबंध किया, नौकर चाकर रखे, दूध निकाला गया, और दूध निकालने में भी 10 गाय का 1-2 घंटे लगे, उसे आपने गर्म किया। अब मान लीजिए आपके गिलास में भर करके दूध सामने आया, एक कागला बीट कर दे, दूध बहुत अच्छा है, दूध गाय का है, लेकिन आप नहीं पिएंगे, बेकार हो। इसी तरह से आप अगर किसी धर्म वाले से, किसी महात्मा का, किसी पड़ोसी का कुछ भी कर्तव्य देकर के घृणा करोगे, भय आएगा, डर आएगा, तो जैसे इतनी मेहनत के बाद गर्म किए हुए दूध में कागला की बीज पड़ने से बेकार हो जाता है, इसलिए आपकी तपस्या चाहे 80 साल की हो कि 8 साल की हो कि 8 दिन की हो, घृणा ईर्षा राग द्वेष ये कागला की बीज बन करके आपके भजन में आके पड़ जाते हैं और सारी शक्ति बेकार हो जाती। कितने लोग मुझे कहते महाराज जी दिन रात राम राम करता हूं, मेरा कोई काम ही नहीं होता। हनुमान जी राम का नाम लेते रहे लेकिन डरे नहीं। ये सभी समाधि की बात बता रहा हूं। पूंछ में आग लगाई गई, इतिहास क्या बताता है? आप डर गए, खत्म हो गए। आप में आलस आए, खत्म हो गए। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम, रामायण। और वही आलस वाली बात बताता हूं। आज थोड़ा विश्व का था जबरदस्त भारत की संस्कृति। सीता की खोज में राम की आज्ञा प्राप्त करके हनुमान जी चले और करीब करीब मोरारी बाबू से लोगों ने कितनी बार रामायण कथा सुनी होगी और ध्यान से सुने होंगे। काल राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम, यहां समय की मर्यादा नहीं दी। हनुमान सीता की खोज करो और कहां है पता लगने पर मुझे बताओ, समय की मर्यादा। जब तक सीता जी मिल नहीं जाती मैं विश्राम नहीं करूंगा। विश्राम भी नहीं किया और डरे भी नहीं। अब देख लीजिए संजीवनी लाते समय आज विश्व का था धन्य है भारत, क्या सिखाता। हे हनुमान जी, सूरज निकलने से पहले संजीवनी आ जानी चाहिए, विश्राम न करना, आप लेट हो गए। तो मैं सुमित्रा के सामने कैसे पहुंच पाऊंगा? उसको कितना विश्वास था कि राम की सेवा में रहने वाले का किसी तरह विनाश नहीं होगा। इसी बात को थोड़ा और देख लीजिए, अच्छे काम करने वालों का, अच्छे लोगों के पास रहने वालों परेशानी आ सकती, लेकिन विनाश नहीं होता। ना मैं भक्त पड़े, जा विचार करो। सुमित्रा को विश्वास है, अगर इसे कुछ हो गया तो सुमित्रा के विश्वास का क्या हो। इसकी रक्षा करना हनुमान जी बड़े भाई के रूप में मेरा धर्म है। हनुमान जी विश्राम नहीं करना, जाओ संजीवनी। अब देखिए चिंतन, सीता के लिए नहीं कहा कि 2 दिन में आना, 4 दिन में आना, 15 दिन में आना। सीता का पता लगाओ, पता चलने पर आकर मुझे सूचना दो, कोई समय की मर्यादा नहीं। और यहां राम कहते हैं अगर सूरज निकलने से पहले नहीं आए तो मेरा भाई मेरे हाथ से निकल जाएगा, मैं क्या मुंह दिखा के जाऊंगा। लोग कहेंगे कि पत्नी के प्रभाव में आकर छोटे भाई का ध्यान नहीं दिया। और संस्कृत का शब्द है बड़ा सुंदर, आप बताऊं जो यहाँ बेटियां बैठी हैं। संस्कृत में पति के छोटे भाई को देवर कहा जाता है, देवर। देवर का जानते हैं कि अपने देवर की जो हर तरह श्रेष्ठ रूप से रक्षा करे तभी तो बड़े भाई हुए। देवर का अर्थ यही होता है, उसकी रक्षा करना। और आजकल तो लड़ाई होकर निकाले जा रहे हैं, अरे घर में से निकलो। एक बात है, देवर संस्कृत शब्द, ये रक्षा ये सीता का भी, और सीता कारण ही से गवा दिया। लोग क्या कहें, मैं बड़ा भाई। हनुमान जी कहते थे, अब देखिए रामायण, हनुमान जी मैं थोड़ा आलस आए, आराम करने लगे। आप सुने होंगे सब रामायण में काल नेमी करके मिला ये सब। फिर आ रहे हैं भरत में एक दुर्वा, दुर्वा मतलब ये घास, नीचे गिर गए। तब उनको ख्याल आया कि राम की आज्ञा का पूरा पालन नहीं किया, मैं कहाँ आलसी बन के नहाने चला गया, काल नेमी के चक्कर में आया। अब देख लीजिए, इसलिए आप सबसे कहूंगा, जा सोच लीजिए आप, लंकेश ने भी यही कहा, ये सब क्या हो रहा है। शिव जी कहते हैं, तूने मेरे से वादा किया था कि हर काम आपसे पूछ करके करूंगा, और हाँ कहेंगे तभी करूंगा। हाँ हाँ, तो सीता की तरफ से मेरे से पूछा था, और पूछता तो मैं हाँ बोलता कि हाथ पकड़ने जा, जब पूछा नहीं तो सत्यानाश। इसलिए प्यारे बच्चों, कोई भी काम माता पिता से बिना पूछे नहीं करो, और बिना पूछे करोगे तो उसका फल ये आप देखो। पूछा था मेरे से और कहा था, वादा किया था, तो सत्यानाश हो। हनुमान जी शंकर के ग्यारहवें रुद्र हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन आज पूरा विश्व करा हनुमान जी सिखा रहे हैं। आपके माता पिता जो कहें वही काम करो। राम ने कहा था जल्दी जाकर सीधे संजीवनी ला, हम कहते बेटा सीधे स्कूल में जाके पढ़ और सिनेमा देखने चला जाता है, मटमकस कहते चला जाता, तो भाई क्या करो। आज वाला तो यही हुआ था हनुमान। कभी कभी मैं भरूच जाता हूँ, कार्यक्रम होता है, अभी तो कब जाता हूँ थोड़ा, तो 11:30-11 बजे मेरी गाड़ी प्रसार होती है, तो सिनेमा के सामने बच्चे किताब लेके खड़े। मैंने कहा एक बहुत से मास्टर पढ़ाने आए किताब मेरे, कई बार डीएसपी कलेक्टर पढ़ते उससे भी कहता हूँ, कहे स्वामी इनके माँ बाप को समझाए कि मैं क्या करूँ, इनके माँ बाप को समझाए, तुमको पता है कि किताब लेके कहा जाता है। एक बात यही समझने की बात है, राम ने कहा सीधे जा और हनुमान जी कहाँ चले गए, काल ने भी नहाने लगे, ये करने लगे, और देखे क्या हालत हो गई। बात पूरा विश्व कहता है कि नहीं, जिसमें भाव रखो उसकी पूरी बात का पालन करोगे, तकलीफें आएंगी लेकिन तुम्हारा सत्यानाश होने वाला नहीं, सत्यानाश नहीं, विचार कीजिए। तो सभी समाधि का मतलब क्या, काम छोड़ देना। शंकराचार्य जी कितने बड़े विद्वान, कितनी पुस्तकें लिखा, काम छोड़ दिया। अरविंद घोष, विवेक, ये सब सभी समाधि वाले हैं, बड़ा शक्ति वाले। मैं आपके सामने इतना बोलता हूं, ये भी सभी समाधि है, भाव समाधि। इसलिए आज इतना ही कहूंगा, कारखाने में रहो, जहां भी रहो, आप एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, आप एक वक्ता हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, कुछ भी हैं, लेकिन भाव ये रखो कि जो काम मुझे मिला है वो जब तक नहीं पूरा होगा तब तक दूसरी तरफ ध्यान नहीं है। आज का क्या काम है, आज विद्यार्थी हैं, कल प्रोफेसर हैं, और देखो कितनी ऊर्जा जागृत, और कुछ भी हो जाए लेकिन पलायनवादी नहीं बनता, आएगी नहीं, पूछ में लोग आग भी लगाएंगे। लेकिन हनुमान जी पूछ में आग लगी, लंका जला दी, लेकिन एक दुर्वा घास से गिर गए। क्यों गिर गए, क्योंकि उन्होंने राम की पूरी बात को स्वीकार, स्वीकार करते वैसा नहीं होता। तो सभी समाधि का मतलब जो काम करो उसमें तन्मय हो जाओ, वो परमात्मा का काम, आप राम मंदिर में गए तो राम ही सब, लेकिन घर में आके रसोई बनानी पड़े तो राम की ही शक्ति से बना रहे, भोजन करने बैठिए तो राम ही खा रहे, नहीं तो पति घर में आए कि भगवान ने कहा पति राम होता है ला भोजन, तो अरे भाई तो मैं बता दूं बड़े प्यार से, राम इतना काम करके मूर्ति बने और आप जीते जी मूर्ति बन के खुद उठा के भी नहीं खा सकते, पत्नी से कहते हैं मैं तो राम हूँ खिला में बात कर जा विचार तो करो, तो इसलिए कितने गलत आता है। तो सभी समाधि में भाव समाधि में कर्म का त्याग नहीं है, कर्म में ही ईश्वर का दर्शन है और उसके सिवा दूसरा न सुनते। जैसे आज की बात है, आज आप यहाँ आए सब चीज अपनी जगह ठीक है, बस इतने आनंद में रहो तन्मय में रहो। मैं तो एक किस्सा सुनाऊं, महात्मा जी कथा कर रहे हैं, महात्मा जी कथा कर रहे हैं आंख बंद करके, मैं भी बंद करके, कोई समाचार आया तो लोग उठ के चले गए, गांव का कोई कहानी समाचार आया उठ के चले गए, महात्मा जी आंख खोले तो एक आदमी था, कहते चलो एक तो समझने वाला है, नहीं महाराज जी वो कुर्सी मेरे घर से आई है, छोड़ के जाऊंगा तो कोई इतना ले जाए इसलिए बैठा सुनने के लिए ले गया, ये समाधि लगी है कुर्सी इसका भाग उठे और आपके प्रवचन में कोई समाधि, कोई समाधि नहीं, आप एक बात कर ऐसा। तो मेरे प्रिय आत्मा, राम ने भी काम किया, किसने भी काम किया, अर्जुन घोष, रमण महर्षि, स्वामी राम से सब ने किया, सभी समाधि, निर्वीज समाधि वाली बात मैं करूंगा, लेकिन सभी समाधि से जब निर्वीज में जाएंगे तो उसका मैं संवर्णन करूंगा, लेकिन हमें आपको कर्म करने के लिए भगवान ने धरती भेजा है, तो समाधि लगा के क्या कर, निर्वीज समाधि के बाद जब किया अर्जुन ने तो समाधि लगा क्या करेगा, एक काम मेरा है तेरा नहीं, तू केवल निमित्त है, और समाधि लगा के बैठेगा तो मेरा काम कौन करेगा, कौन करेगा। इसलिए अर्जुन जो कर्म किया भाव समाधि सभी समाधि, और यही मैं आपसे और भी अगले इस बार बताऊंगा कि आप भी भाव रखकर, ये परमात्मा काम है, बच्चे को पढ़ाते हो तो निमित्त हो, ये परमात्मा है, आप कारखाने में जाते हो कर्म मंदिर है, सब भगवान के स्वरूप है, अपने जिम्मेदारी में, आप पायलट हैं जिम्मेदारी है। मैं एक बड़ी अंदर की बात बताऊं तो जो जा पॉलिटिकल है, ये हमारे देश की बात है, हमारा देश तो बहुत आगे है, किसी देश की बात है मुझे आप लोग परिचित है, वहां के बहुत बड़े आदमी ने, बड़े आदमी क्या प्राइम मिनिस्टर ने, उसका एक प्रतिद्वंदी आ रहा है, उसने कहा पायलट तुम जितने करोड़ रुपया मांगोगे मैं दे दूंगा, लेकिन ये आदमी मेरा विरोधी है, अगर मेरे देश में आ गया वापस तो ये जो है प्रधानमंत्री बनेगा, तो किसी भी तरह लैंड को क्रैश करो, और तो नहीं किया, कहा कि 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ दो, एक के पीछे इतने 322 लोगों को मैं मार नहीं सकता, नहीं मारता, मैं तो पहला सूट से कूद जाऊंगा, मैं तो गड़बड़ कर कूदूंगा, लेकिन इतने लोग, ये लोग कैसे बचे, नहीं होगा, एक बात करता हूं। तो आप देख लीजिए आपका देश तो कितना अच्छा, कोई बोल नहीं सकता, कुछ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है हम थोड़े बहुत हैं लेकिन इतना नहीं, एक जिम्मेदारी, मुझे क्या जिम्मेदारी, मुंशी प्रेमचंद जी का एक किस्सा है संक्षेप में, मैं और आप दुश्मन है, मैं गांव का मुखिया बन गया, किसी ने कहा मनीष आनंद जी अब गांव का मुखिया बने हो तुम, आप दुश्मन इसको निकालिए, कहा कि जब मैं मुखिया नहीं था तब दुश्मन था, मुखिया बनने से न्याय करना है, किसी को निकालना है, गलत करेगा तो आपको भी निकालोगे, बाकी केवल दुश्मनी के नाते में और निकालना है तो दुश्मन ही निकालना है, इसको नहीं निकालना, जब आप जिम्मेदार बने तो दुश्मन ही निकालिए, दुश्मन को निकालने की जरूरत नहीं, ये एक भावना।